आयत नंबर 7, वकाल लजीना कफरू, और कहा इन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया, या नोट कीजिएगा अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। क्या ये लफ्ज़ नहीं आ सकता था वकाल अल काफिरून, काफिरों ने कहा। बहुत ही एक बारीक सा नुक्ता है, अगर मैं आपको समझा सकूँ तो देखिए, लफ्ज़ वो है काफिर, कुफर करने वाला, वो बना ही इसलिए था कि कुफर करे। यहाँ क्या अल्लज़ीना, वो लोग कफरू जिन्होंने कुफर किया, फ़र्क है दोनों में, बहुत बड़ा फ़र्क है। काफिर इसम है, और ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ने काफिरों को बनाया था और वो फिर बेचारे कुफर ही तो कर सकते थे। या ऐसे जैसे हम कहते हैं काजिब और लाइक काम करने वाला, लेकिन यहाँ अल्लज़ीना कफरू करके बताया अल्लाह ने इनको कुफर के लिए नहीं पैदा किया था, इन्होंने फिर भी कुफर किया, यानी उनका एक फेल बयान कर दिया उनके इसम की जगह। बहरहाल अल्लाह ने किसी को भी कुफर के लिए पैदा नहीं किया, बस ये बात समझ लीजिए। क्या कहा इन लोगों ने, हल नदुल्लुकुम, क्या हम बताएं तुमको। नदुल्लु का लफ्ज़ नून हम, और दुल्लु दलालत से, दलील लफ्ज़ भी इसी से, दल्ला या दुल्लु यानी किसी चीज़ को कन्वे करना, उर्दू में लोग बोलते हैं दलाली, वही लफ्ज़ है ये भी। क्या हम तुमको बताएं अला रजुलिन, एक शख्स के बारे में, कौन सा वो, युनब्बियुकुम, वो खबर देता है तुमको, खबरें देता है, क्या खबरें देता है। अब आप नोट कीजिए अला रजुलिन युनब्बियुकुम की जगह क्या नहीं कहा जा सकता था, हल नदुल्लुकुम अला नबीयुन, बिल्कुल उस बात का ऑपोजिट है जो मैंने अभी आपको समझाई अल्लज़ीना कफरू में। ये कह रहे हैं कि वो शख्स जो खबरें देता है, तो अरबी जुबान में खबर देने वाले को क्या कहते हैं, नबी, नबा से नबी होता है ना, नबूवत भी इसी से है। अगर उनके दिल अल्लाह के नबी सल्लम की नबूवत को मान चुके होते तो ये कहने की बजाय कि अला रजुलिन, वो एक शख्स है, युनब्बियुकुम, जो बड़ी खबरें देता है तुमको, इसकी जगह क्या कहते, हल नदुल्लुकुम अला नबीयिन, और तुम्हें एक नबी की खबर ना दे। देखिए ये है दिल के मामले, जो दिल में होता है ना वो जुबान पे जरूर आता है। इंसान ना चाहते हुए भी किसी को जिक्र करे ना करे, लेकिन जो उसके दिल में होता है उसका इजहार उसकी बातों से हो जाता है। हर एक को नहीं पता चलता, लेकिन बारीक भी इन लोग जो होते हैं उनको इन बातों से पता चल जाता है कि एक इंसान किसी के बारे में क्या सोच रहा है। खैर क्या खबरें वो देता है, इजा मुज़िक तुम, जब तुम रेजा रेजा कर दिए जाओगे, मुज़िक तुम, और आगे भी लफ्ज़ आ रहा है मुमज़्ज़क, मज़क़ से है चूरा चूरा करना, रेजा रेजा करना, डिमोलिश करना, यानी किसी चीज़ को बिल्कुल ऐसे जैसे मसल देने के मानों में, यानी उसकी खबरें क्या हैं कि जब तुम मट्टी में मिलकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे, मुराद क्या है, मर जाओगे, इन्नकुम लफी खल्किन जदीद, तो इस वक्त तुम तो बिल्कुल नई तख्लीक में पैदा हो जाओगे। यानी ये काफिर कहते हैं क्या हम तुम्हें एक ऐसे शख्स के बारे में बताएं जो तुम्हें ये खबर देता है कि जब तुम मट्टी में मिलकर बिल्कुल रेजा रेजा हो जाओगे तो फिर तुमको नए सिरे से पैदा कर दिया जाएगा। अब ये बात क्यों कही गई, इसका और इससे अगली वाली आयत दोनों को अगर आप देखें तो इसका जिक्र आयत 46 में आएगा इसी सूरत में। खुलासा क्या है कि नबी सल्लम की मुखालफत नबूवत के इब्तदाई ज़माने से ही शुरू हो गई थी, और मुशरिकीन अपनी महफिलों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तहज़ाइया जुमले, यानी आपका मजाक उड़ाने वाले, आपको लट डाउन करने वाले जुमले बोलते थे और दोहराते थे। लेकिन 7-8 साल तक वो लोग आपके बारे में मुसलसल उलझन और शशबन का शिकार रहे कि ये क्या तब्दीली आ गई है, यकायक आप बदल गए हैं और आज तक तुमने ये बात कभी सुनी नहीं। अगली आयत उनकी इस कैफियत को मजीद वाज़े करती है, आयत 8, अफ्तरा अलल्लाही कज़िबा, क्या इसने झूठ बांध लिया अल्लाह पर। अब आप इमेजिन करें आपके हमारे दौर की कोई पार्टी है, कोई महफिल है, कोई गेट टुगेदर है, अमूमन लोग बातें क्या करते हैं। यहाँ एक और साइड इशू है जो आगे आपको इस बात में और समझ आ जाएगा कि वो लोग जो हक को मानते भी नहीं है ना, वो हक के बारे में डिस्कशंस बहुत करते हैं, पार्टीज में, महफिलों में, गुफ्तगुओं में, डिनर्स पे, लंचेस में और गेट टुगेदर्स में, वो देखो ये क्या हो रहा है, वो देखो वो क्या कर रहे हैं, वो देखो। मैं सोचती हूँ कि अगर इंसान को अपनी ज़ुबान की कबाख्तों का फिक्र होना तो ज़ुबान सी कर बैठे किसी के सामने। खुलासा ये कि क़यामत के दिन बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान की खेतियों की वजह से अपनी नेकियों की फसल काट चुके होंगे। ये जो तर तर करके ज़ुबानें बोलती हैं ना, बे रोक टोक तबसरे, फुला ऐसा उसकी नीयत ख़राब है, खा गए पी गए ये कर गया, लूट के ले गए, पता नहीं किसी हुक्मरान के कहीं गुना माफ करा रहे होते हैं, समझे कि मजहबी लीडर कह लीजिए या वो क्या बोलते हैं उसको, सोशल वर्कर्स, नाम नहीं लेना चाहती, लोग ईदी साहब का नाम ले लेकर उनके ऊपर कभी फतवे देते हैं कभी कुछ, यानी सिर्फ बोलना जो है। और मैं सोचती हूँ कि औरतें बोलती हैं ये भी गलत है, औरतें जो बोलती हैं ना वो तो औरतें ही बोलती हैं, जो मर्द बोलते हैं वो अल्लाह की बना, औरतें कपड़े फैशन जूतियाँ या चुगलियाँ, छोटी छोटी औरतें होती भी छोटी हैं उनकी चुगलियाँ भी छोटी हैं, मर्द जिस धड़ल्ले और जोश के साथ खास तौर पे जो सियासत की गुफ्तगुएं करते हैं अल्लाह की बना, कभी ना इंसान बोले। इमेजिन करें अल्लाह के नबी का दौर है, आपने नबूवत की दावत दी, लोगों को एक अच्छे काम की बात दी, नहीं मानते ना मानो तुम्हारी मर्जी को फोर्स तो नहीं करता, इस तरह की बातें क्यों नबी पे करते हो कि अल्लाह ने कुरान में उतार दिया कि देखो ये आपके बारे में क्या बातें करते थे कि देखो इतनी बड़ी जुरत की इसने, अल्लाह पे झूठ गढ़ के खुद को नबी कह दिया। दिल मानते थे लेकिन जुबानें मानना नहीं चाहती थी, यही बातें आगे अल्लाह ने उनकी हमारे सामने रखी। नंबर वन लिख सकते हैं आप चाहें तो अफ्तराल अल्लाह ही कजिबा, यानी किसी महफिल में बैठते तो डिस्कशंस में अल्लाह के नबी के बारे में ये डिस्कशन शुरू हो जाता, नहीं, झूठी नबूवत का दावा है, ऐसे ही कहते हैं कुछ नहीं है और ये और वो है। हालांकि 40 साल की आपकी ज़िंदगी उनके सामने एक रिकॉर्ड की तरह थी, आपकी सीरत आपका किरदार खूब था, सादिक और अमीन थे, और उन्हीं के ऊपर आज आप कजीबा का झूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये बात तो नहीं है। चले एक महफिल में ये बातें, अब इस पर भरपूर डिस्कशन हुआ होगा, फिर एक ने जुमला छोड़ा होगा, फिर दूसरा बोला होगा कहीं इधर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वो कहता है मैंने ये सुना है, तुम्हें क्या पता अंदर क्या बाहर क्या, खत्म होगी महफिल, दैट्स इट। अगला वीकेंड फिर आ गया, फिर कहीं शादी में मिल बैठे, अब दूसरा इल्ज़ाम मेरे प्यारे नबी पे, अम बिही जिन्ना, नहीं, आज हम सोचते नहीं इसको तो जुनून हो गई, जुनूनी है, क्रेजी है, जरा लेके सोचे अपने ऊपर, आपके बारे में कोई महफिलों में बातें करे अच्छा लगता है? हम तो अपनी जाती जिंदगी की भिनक नहीं पड़ने देते और किसी को पता लग जाए हम कहते तुम्हें बताया किसने, किसने जुरत की मेरे बारे में ये बात बताने की। लेकिन आप देखिए अल्लाह के नबी को लोग पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं, और आज भी वल्ला ही लोग दीनदारों को पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं। अपने खानदान की कोई बात हो ना 10 दफा सोच के बोलेंगे, कहेंगे छोड़ो खैर तो बात पता चल गई तो बेइज्जती तो अपनी होनी है, खानदान है, अपनी कौमियत बिरादरी, मिसाल है कि हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लोगों की कोई बात देखें तो शायद हम किसी अरब से ना करें कि खाम खा वो कहेंगे सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। लेकिन जब इंसान का शऊर ख़त्म हो जाता है ना तो उस वक़्त उसको बिल्कुल परवाह ही नहीं रहती कि वो क्या बोल रहा है कब बोल रहा है। और मैं कहती हूँ कि अगर कम बोलने की आदत डाल दी जाए ना अल्लाह के नबी की एक हदीस पे अमल करते हुए कि नजा मन समत, दोनों तरह से आती है, निजात पा गया वो जिसने खामोशी इख्तियार की, और दूसरी तरफ मन समता नजा, जो चुप रहा उसने निजात पा ली। तो कभी भी ये खराबियां ना, और इससे भी खराबियां कितनी आती हैं, एक से बात पहले एक के दिमाग की होती है वो 4 की बन जाती है, 4 से 8 की होती है और जुबान ज़दे आम होती है, पता चले पीछे से बात का जो छोड़ने वाला था वो उस सब का गुना लेकर चला गया। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको सोचाओ, क्या नबी को जिन्ना कहते हो? और जिन्ना आपको पहले भी बताया जुनून, आसेफ ज़्यादा शख्स नौसबिल्ला जिसका दिमागी तोज़न ख़राब हो, बहकी बहकी बातें करने वाला, यानी कभी आप पे तरस आता, कहते नहीं नहीं झूठा नहीं हो सकता ये, 40 साल से नहीं बोला, इसकी शक्ल नहीं झूठ वाली, हाँ बेचारा इस पे कोई असर हो गया, इसको किसी ने कर दिया, अब ये इल्ज़ाम लगाया तो फिर भी दिलों में फिर उठा कि नहीं जुनूनी ऐसे होते हैं, जुनूनियों की ज़ुबान से ये बातें निकलती कि या युहल मुज़म मिल्क मिल लैला इला कलीला, इतना प्यारा कलाम निकलता है, नेवर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सोचने लगे कोई बात नहीं, अच्छा भी कुछ और भी होगा। और यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए सीरत को भी, मैंने सीरत में तो बड़ी तफसील से ये बात समझाई थी, आप कुरान की तफसीर के दौरान थोड़ा सा उसका खुलासा ले लीजिए। आप देखिए कि नबी सल्लम के मक्की दौर के कितने साल थे, 13 साल थे ना, ठीक है, आप इसको 3 हिस्सों में बांट लें, आप ऐसा करें कि 13 को 12 कर लें फिलहाल समझने के लिए, 12 साल मक्की दौर को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करें ना तो मक्की सूरतों का वो ग्रुप जो अब इस वक्त हमारे सामने है, जो दरमियान का है, सूरह फुरकान, सूरह सजदा, सूरह सबा से लेकर सूरह अल अहकाफ, सिर्फ सूरह शोरा को छोड़ दें, बाकी ये तमाम सूरतें जो है ना ये दूसरे बीच के 4 साल में हुई हैं, यानी 12 को 3 हिस्सों में करें तो 4-4 साल बने ना, पहले 4 साल को छोड़ दें, आखिरी 4 साल को छोड़ दे, बीच के 4 सालों में ये जितनी सूरतें हैं ना, फुरकान, सजदा, सूरत सबा और यहाँ से लेके मुसलसल अब अगली सूरतें सूरत अल अहकाफ तक, ये सिवाय एक सूरत शुरा के, क्योंकि वो शुरू किया, ये सब मक्की दौर के मिडल में हुई। ये वो दौर था कि लोगों को अब खौफ हो गया था कि इस नबी की या इस शख्स की बात बढ़ती जा रही है। शुरू में अहमियत नहीं दी का, ये ऐसे चंद लोगों के दिमागों में एक बात आ गई है, लेकिन अब वो कह रहे थे फितना बढ़ रहा है, उलझन, परेशानी, हर जगह आप मौज़ सुखन है, हर जगह आपकी बात, कोई शायर कहता है, कोई जादूगर कहता है, कोई मजनू कहता है, कोई राय तो थी नहीं। और इसके बाद जो आखिरी 4 साल गुजरेंगे ना, उस दौर में 15 सूरतें नाजिल हुई, सूरत अल अनाम, सूरत अल अराफ और सूरत यूनुस से लेकर सूरत मोमिनून तक। इसमें सूरत हिजर को निकाल दें, ये पहले दौर की है, ये सूरतें आखिरी दौर की थी, गोया कि आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन हो गई। सारी बात का खुलासा क्या है कि मक्की दौर के आखिरी सालों में लोग नबी सल्लम के बारे में मुख्तलिफ राय का शिकार हो गए थे, उनको कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अल्लाह ताला कहते हैं ये सब हवा में तीर चला रहे हैं, अटकल पच्चू हैं, आओ तुम्हें बताऊं कि असल बात क्या है। ना तो नबी कजीबन है, ना नबी के साथ जिन्ना है, बल्कि बलिल लजीन ला युमिनून बिल आखिरती फिल अजाबी वद्दलालिल बईद, बल्कि वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो अजाब में और दूर की गुमराही में मुबतला हैं। असल ये मसला है। नंबर एक, इनको आखिरत का यकीन नहीं है, मरने के बाद जीने का यकीन हो, फमे या मल मिसकाल अशर यरा का यकीन हो तो इनकी ज़ुबानें ऐसे बोले, हाउ इज़ इट पॉसिबल, और फमे या मल मिसकाल ज़र्रत खैरिन का यकीन हो तो इतनी बड़ी नेकियों के मौके को ये छोड़ दें, इट्स इम्पॉसिबल। तो पहली वजह लिख ले, गॉसिप की और इल्ज़ामात की और दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ रखने की पहली वजह आखिरत पर ईमान नहीं है, कि इस बात पर आखिरत में पकड़ हो सकती है जो हमारी जुबानें बोलती हैं। दूसरी वजह वद्दलालिल बईद, दूर के भटके में, ये हिदायत का रास्ता भी नहीं जानते, क्योंकि जो हिदायत पे होता है वो कभी इस तरह की बात दूसरे के बारे में बगैर सोचे नहीं बोलता। दुनिया में भी इनकी जानें तंगी की हैं, आप देखिए कि ऐसा शख्स दुनिया में भी खुश नहीं रहता, लेकिन आखिरत में तो जो तंगी होगी उसका आगाज तो कब्र से ही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को अल्लाह कहते हैं ओवरलुक कर दो। खुलासा क्या निकला इस बात का कि जो लोग नबी सल्लम की सच्चाई को दिल से मानते थे लेकिन ज़ुबान पे उसको लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब ये जिक्र ज़ुबान पे आएगा तो हमारी बात से दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा, लिहाजा हम इस बात को नहीं लाते। अब इस बात को कहने के बाद अगली आयत में अल्लाह ताला ने बात को थोड़ा सा बदल दिया रुख को, यानी बिल्कुल आप महसूस करें ना, कुरान पढ़ने का मज़ा ही तब आता है जब आप उन गलियों में अपने आप को लेकर जाएं तसव्वुर में, मक्का की गलियां जहां जाते उतर रही हैं, अच्छा मदीना की गलियों में सूरत अहज़ाब उतरी थी, हमारा तो दूर दूर का कोई उन चीज़ों से वास्ता ही नहीं होता। हम मक्का का नाम भी लेते हैं तो इबादत के नाम पर ले लेते हैं, हज के लिए, तवाफ़ के लिए, उमरे के लिए, और दैट्स इट। हमने तो कभी अल्लाह के नबी की सीरत के नाम से उन शहरों को जाना ही नहीं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे नबी पे इतनी बातें करते हैं, अफलम यरो इला मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्दी, तो क्या उन्होंने देखा नहीं है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है आसमान और जमीन में से। क्या कायनात का मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन, गौर करो, देखो, और आगे पीछे से मुराद तारीख भी है। पिछली कौमों के हालात से सबक नहीं लेते? आप कह सकते हैं कि तस्कीर भी आला इल्ला, यानी अल्लाह की जो नेमतें हैं उसका भी जिक्र इस एक आयत में आ गया कि जरा आसमान की तख्लीक को देखो, ज़मीन को देखो, और साथ ही साथ तस्कीर भी अय्याम इल्ला भी आ गया कि तुमने अपने पिछले लोगों के हालात से नसीहत नहीं ली, कैसे उनको उड़ा दिया गया कि इन नशा नक्सिफ बिहिमुल अर्द, अगर हम चाहें तो इन्हें ज़मीन में धंसा दें। कैसे? कोई कौम धंसी थी ज़मीन में? कौम लूत, कौम समूद पे भी धमाके हुए थे। अल्लाह कहता है ये ज़मीन के ऊपर रहने के बजाय इसके अंदर चले जाएं, या फिर औनस क़तलैहिम किसफ़म मिनस समाई, या इन पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दें। किसी पे गिरा था? आसमान से किस पे पत्थर गिरे थे? कौम लूत पे। वल मोतफिकातु, उल्टाई की बस्तियाँ, अल्लाह कहते आसमान ही गिर जाए इन पर। इन नफी ज़ालिकलायातल्लिकुल्लिअब्दिमुनीब, यकीनन इसमें निशानी है उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रजू करने वाला हो। اگر آپ شروع سے لے کے آیت نمبر 1 سے 9 تک ایک سٹریچ میں دیکھیں تو آپ کو یہاں کفر کے رویوں کا پتہ چل گیا. شکر گزاری کو چھوڑ کر جب لوگ ناشکریوں کے رویوں پہ آتے ہیں تو ان کی زندگی کن مشکلوں کا شکار ہوتی ہے. اب آگے آیت نمبر 10 سے لے کر 21 تک 10 to 21 ہمیں شکر گزار رویے کی عملی مثال حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت میں, اور پھر اس کے بعد ناشکری کی مثال آیت نمبر 15 سے لے کے 21 تک میں قوم سبا کی دکھے گی. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم دو مختلف کردار پڑھنے لگے. ایک کردار ہوتا ہے انسان جیسے میں اور آپ, لیکن کبھی کبھی کردار شخصیات سے اوپر اٹھ کر قومیں بھی بن جاتی ہیں. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جب لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ان پر کتنا غصہ آتا ہے, اور کن کن مشکلات میں ان کو ڈال کر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اور آپ پوری سورت کا تھیم دیکھیں گے, ناشکریوں کا نتیجہ نعمتوں کا چھیننا, اور شکر گزاریوں کا نتیجہ اللہ کی نعمتوں میں برکت کا آ جانا. ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہتری کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہر جگہ نہیں ہے, چیدہ چیدہ مقامات پر ہے, لیکن جہاں بھی ہے خوب ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور داؤد باپ بیٹا تھے. تھوڑا سا سمجھ لیجئے, آپ ان کے قصے کو سنتے وقت اس دنیا میں مسلمان کیسے جیے اس کی جھلکیاں ملیں گی. کیا اسلام ترقی کا دشمن ہے؟ کیا اسلام کو سیل فونز نہیں پسند؟ کیا ٹی وی جو ہے وہ شیطان ہے؟ اور کیا سیل فون رکھنا جو ہے وہ اپنے ساتھ شیطان کو رکھنا ہے؟ یہ ساری باتیں جو مسلمانوں نے جذبات میں آ کے کی, اور جس کا نقصان کیا ہوا کہ ریسرچ چھوڑ دی اور ان کی جگہ دوسرے لوگ ان چیزوں پہ آ گئے, اور نقصان کس نے اٹھایا؟ سب نے اٹھایا. ایسے تمام لوگوں کو ان آیتوں سے انشاءاللہ سبق ملے گا. ہم اس کا بھی طریقہ کار ایسے ہی رکھیں گے کہ ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں, لیکن اینڈ پہ انشاءاللہ پھر ہم اس میں سے ڈسکشنز لے کے چلیں گے, اور یہ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تو ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.